रात का समय था। अस्पताल की चौथी मंजिल पर बना वह कमरा किसी कब्र की तरह शांत पड़ा था। बाहर गलियारे में जलती पीली रोशनी कमरे के अंदर तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाती थी, जैसे वह भी यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती हो। कमरे में रखी मशीनों से आती बीप बीप की आवाज हर कुछ सेकंड में उस सन्नाटे को चीर देती थी और फिर सब कुछ दोबारा वैसा ही खामोश हो जाता था। उस बिस्तर पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसकी सांसें इतनी धीमी और टूटी हुई थीं कि हर सांस के बाद ऐसा लगता जैसे अब अगली सांस आएगी ही नहीं। उसकी छाती मुश्किल से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो वह हर बार सांस लेने के लिए अपनी पूरी बची खुची ताक झोंक रहा हो। उसके होंठ सूखे थे और शरीर इतना कमजोर कि उंगलियां तक कांप रही थीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जिंदगी कम और थकान ज्यादा दिखाई दे रही थी। आंसू चुपचाप उसकी आंखों के किनारों से निकलकर तकिए में समा रहे थे। वह रो नहीं रहा था, उसके पास रोने की ताक भी नहीं बची थी। वह बस सोच रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसके दिमाग में यही सवाल बार बार गूंज रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमते हुए देखी, कोई अपराध नहीं, कोई गलत रास्ता नहीं, फिर भी यह सजा। उसके होंठ हल्के से हिले, आवाज इतनी कमजोर थी कि कमरे में मौजूद मशीनों की आवाज भी उस पर भारी पड़ रही थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह एक पल के लिए रुका, सांस लेने में उसे कुछ सेकंड लग गए। ना ही किसी को करने दिया। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द उसके गले से निकलने से पहले ही हार मान लेता हो। उसकी उंगलियां चादर को कसकर पकड़ गईं, मानो वह जिंदगी को ही पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी ताक में रहते हुए सब किया। उसकी आंखें छत की ओर टिक गईं। पर आज एक लंबा सन्नाटा, आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। कमरे में फिर वही बीप की आवाज गूंज उठी, इस बार पहले से थोड़ी धीमी। अंडस्को अस्पताल की मशीनों की बीप बीप की आवाज के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। कोई कदमों की आहट नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस वही दोहराती हुई आवाज जो उसे यह याद दिला रही थी कि उसका दिल अभी भी चल रहा है किसी तरह। हर बीप के बीच का सन्नाटा पहले से लंबा लगता जा रहा था, मानो समय खुद भी थक चुका हो और अब आगे बढ़ना नहीं चाहता हो। उसने खाली कमरे की तरफ एक बार फिर देखा। बिस्तर के पास रखी कुर्सी पूरी तरह खाली थी। वहां बैठने वाला कोई नहीं था, न कोई जो उसका हाथ पकड़ सके, न कोई जो ये कह सके कि मैं यहीं हूं। उसके होंठ बहुत हल्के से हिले और उसने खुद से ही बुदबुदा कर कहा, इस आखिरी समय में मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। उसके शब्द हवा में ही घुल गए, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। कांपते हुए हाथों से उसने अपने सामने रखा गेमिंग लैपटॉप उठाने की कोशिश की। वह हल्का नहीं था, या शायद अब उसके हाथों में उतनी ताकत ही नहीं बची थी। उंगलियां सुनना पड़ चुकी थीं और कलाई में हल्का सा दर्द उठ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी भारी पत्थर को उठा रहा हो, फिर भी उसने हार नहीं मानी। बड़ी मुश्किल से उसने लैपटॉप को अपनी छाती के पास खींच लिया। स्क्रीन ऑन होते ही नीली रोशनी कमरे के अंधेरे को चीरती हुई उसके चेहरे पर फैल गई। वही रोशनी उसके पीले पड़ चुके चेहरे को और भी बेरंग बना रही थी। उसकी थकी हुई आंखों में उस स्क्रीन की चमक झिलमिला रही थी, लेकिन पलकें खुली रखना भी अब उसके लिए आसान नहीं था। वह स्क्रीन को देखता रहा, उस पर गेम का एंडिंग आइकॉन चमक रहा था। वह खेल जिसे उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरा किया था, वह खेल जिसे उसने एक दिन पहले ही खत्म किया था, तब जब उसके शरीर में अभी थोड़ी सी ताक बची हुई थी। उस दिन उसने जीत हासिल की थी, आखिरी बॉस को हराया था, कहानी को उसके अंत तक पहुंचाया था। लेकिन आज उस जीत को दोबारा महसूस करने की ताकत उसमें नहीं थी। उसके हाथ कंट्रोलर या कीबोर्ड तक पहुंचने की हालत में नहीं थे। खेलने की इच्छा थी, लेकिन शरीर ने साफ मना कर दिया था। वह बस देख सकता था, सिर्फ देख सकता था। अजीब है, उसने मन ही मन सोचा, जिंदगी में पहली बार कुछ पूरा किया और उसे मनाने वाला कोई नहीं। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। स्क्रीन की नीली रोशनी अब भी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वह उसकी आखिरी साथी हो। कमरे में फिर से वही बीप की आवाज गूंजी, इस बार पहले से थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी। गेम खत्म हो चुका था और शायद उसकी कहानी भी। अंडस्को वह हल्का सा मुस्कुराया, मुस्कान नहीं थी, बस होठों का एक सूना सा मोड़। चलो भी, कुछ भी नहीं होता, उसने खुद से कहा, जैसे अपने ही डर को चुप करा रहा हो। तांत्रिक अकादमी, लोग कहते थे कि यह गेम बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल, बहुत निर्दयी, पर उसे कभी ऐसा नहीं लगा। मुश्किल तब होता है जब इंसान घबराता है, जब वह जल्दबाजी करता है, जब वह शक्ति को समझे बिना उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये दुनिया धैर्य मांगती थी। स्क्रीन पर ठहरी उस आखिरी छवि को देखते हुए उसका मन फिर उसी रहस्यमय संसार में डूबने लगा, वह दुनिया जहां कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे समय की एक परत पार हो गई हो। वहां कोई आधुनिक इमारतें नहीं थीं, कोई तेज रोशनी नहीं, बस प्राचीनता की एक गहरी भारी सी सांस। भारत के पुराने पौराणिक ग्रंथों की गूंज उस दुनिया की हवा में बसी थी। मंत्र केवल शब्द नहीं थे, वे अनुशासन थे। देवता केवल पात्र नहीं थे, वे परख थे। हर मंत्र का उच्चारण सोच समझ कर करना पड़ता था, क्योंकि गलत स्वर, गलत भावना सब कुछ बदल सकता था। वहां शक्ति मांगने से पहले ये समझना जरूरी था कि क्या वह शक्ति तुम्हें स्वीकार भी करेगी या नहीं। उसने कई बार देखा था जो बिना समझे बिना तैयारी के आगे बढ़े वे टूट गए, कुछ गुफाओं में हमेशा के लिए खो गए, कुछ मंदिरों में अपनी ही साधना का भार नहीं झेल पाए। और फिर भी वह दुनिया उसे अपनी ओर खींचती रही, शायद इसलिए क्योंकि वहां उसके निर्णयों का वजन था। वहां हर चुनाव कुछ कहता था, तुम कौन हो और तुम क्या बनना चाहते हो। देवताओं से संवाद आसान नहीं था, वे सीधे उत्तर नहीं देते थे, वे सवालों के बदले सवाल रखते थे और कई बार मौन, और उस मौन में ही सच्चाई छिपी होती थी। घने जंगलों के बीच फैले प्राचीन आश्रम जहां पत्तों की सरसराहट भी किसी मंत्र का हिस्सा लगती थी, अंधेरी गुफाएं जहां दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह समय से भी पुराने प्रतीत होते थे, खंडहर बन चुके मंदिर जिनकी टूटी मूर्तियों में भी अब भी एक चेतना बाकी थी। हर यात्रा अलग थी, हर रास्ता नया और हर अंत अलग। उसने ये खेल सिर्फ पूरा नहीं किया था, उसने उसे जिया था। असली दुनिया में जहां उसका शरीर धीरे धीरे हार रहा था, वहीं उस दुनिया में वह कमजोर नहीं था, वह अकेला नहीं था। वहां उसकी सांसें नहीं टूटती थीं, वहां उसके फैसले मायने रखते थे। उसकी आंखें फिर से स्क्रीन पर ठहर गईं, अंत की वही छवि, एक यात्रा जो पूरी हो चुकी थी और एक जिंदगी जो अब धीरे धीरे थम रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। अस्पताल की चौथी मंजिल पर बना वह कमरा अब किसी बंद ताबूत जैसा लग रहा था। मशीनों की बीप बीप की आवाज अब पहले जैसी नियमित नहीं रही थी, कभी तेज कभी धीमी, जैसे वह भी किसी निर्णय के इंतजार में हो। हर बीप के बीच का सन्नाटा लंबा होता जा रहा था और उसी सन्नाटे में उसकी सांसें खोती जा रही थीं। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक लड़का जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन थकान असहनीय, हर सांस उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसी थी। छाती मुश्किल से ऊपर उठती, फिर कुछ सेकंड तक रुक जाती, जैसे अगली सांस आएगी या नहीं ये तय ही न हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जिंदगी की चमक नहीं बची थी, वहां सिर्फ सवाल थे और थकान। वह बस देख सकता था। चलो भी, उसने खुद से कहा, जैसे अपने मन को समझा रहा हो। कुछ भी नहीं होता, लोग कहते थे कि यह गेम बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल, बहुत निर्दयी, पर उसे कभी ऐसा नहीं लगा। उसने ये खेल सिर्फ पूरा नहीं किया था, उसने उसे जिया था। YouTube जैसे विशाल प्लेटफॉर्म पर भी इस खेल की कोई निश्चित एंडिंग नहीं थी। लाखों सब्सक्राइबर वाले बड़े बड़े चैनल, अनुभवी गेमर्स, सब असफल रहे थे, लेकिन उसने नहीं। किसी शोर शराबे के बिना, किसी तालियों के बिना, बस रणनीति और धैर्य। एक हल्का सा गर्व उसके भीतर उठा, शांत, गहरा। अगर एक मौका और मिलता, उसने मन ही मन सोचा, तो इसे फिर से खेलता। हर छिपा रहस्य, हर अनदेखा रास्ता। स्क्रीन पर एंडिंग आइकॉन अब भी चमक रहा था। कमरे में मशीन की आवाज अचानक लड़खड़ा गई, बीप, अल्पविराम, बी। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। असली दुनिया में उसका शरीर हार रहा था, पर उस दुनिया में वह कमजोर नहीं था, वहां उसकी सांसें नहीं टूटती थीं। एक लंबा सन्नाटा और फिर अंधेरा। अंडस्को, उसने आंखें बंद करके उसके मन में एक सवाल बहुत देर से घूम रहा था, आखिर कोई और इसे क्यों पूरा नहीं कर पाया। ये सवाल गर्व से नहीं, जिज्ञासा से पैदा हुआ था। उसने कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं माना था, बस अलग। उसने जितनी बार उस दुनिया को जिया था, उतनी बार उसने महसूस किया था कि वहां ताकत या तेज उंगलियां नहीं, बल्कि याददाश्त और समझ काम आती थी। उसे हर छोटी बात याद रहती थी, किस मंदिर में किस देवता की मूर्ति टूटी हुई थी, किस गुफा में प्रवेश करते समय हवा की दिशा बदलती थी, कौन सा साधु सवाल पूछने से पहले चुप रहता था और कौन जवाब सुनने से पहले। उसकी सोच हमेशा थोड़ी अलग रही थी, वह सीधे रास्ते पर नहीं चलता था, वह पहले चारों तरफ देखता था, संकेतों को जोड़ता था, संवादों के पीछे छिपे अर्थ समझने की कोशिश करता था। शायद यही कारण था, याददाश्त और वह आदत जिसे लोग मजाक में डिटेक्टिव वाली सोच कह देते थे। उसने कई बार महसूस किया था कि ये दुनिया खुद अपने रहस्य नहीं खोलती, उसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और सबसे जरूरी, धैर्य रखना पड़ता है। स्क्रीन पर ठहरी एंडिंग अब उसे अधूरी लगने लगी थी, जैसे कुछ अब भी छुपा हो, जैसे यह अंत सच में अंत न हो। एक बार और, उसने धीमे से सोचा, इस बार सब कुछ, इस बार वह अलग तरह से शुरू करना चाहता था। उसने नया किरदार चुनने की सोची, एक साधारण इंसान, कोई विशेष शक्ति नहीं, कोई दुर्लभ पृष्ठभूमि नहीं, एक ऐसा शरीर जो पूरी तरह स्वस्थ हो, ऐसे माता पिता जो उसे बिना शर्त प्यार करते हों। शायद वह जिंदगी थी जो उसे कभी मिली ही नहीं। उसकी उंगलियां हल्के से कीबोर्ड की ओर बढ़ी, लेकिन वहीं रुक गईं। पलकें भारी हो गईं, जैसे किसी ने अचानक उसकी सारी थकान एक साथ उसके सिर पर रख दी हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर फोकस धुंधला होने लगा। सांसें पहले से भी धीमी हो गईं। उसने लैपटॉप को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने अब जवाब देना बंद कर दिया था। वह धीरे धीरे उसी पर झुक गया। कोई दर्द नहीं हुआ, कोई घबराहट नहीं, बस एक लंबी सांस और फिर कुछ भी नहीं। उसका शरीर बिस्तर पर स्थिर हो गया। मशीन की आवाज एक बार लड़खड़ाई, फिर खामोश, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन अब भी जल रही थी। गेम स्टार्ट नहीं हुआ, कोई लोडिंग नहीं, कोई परिचित दृश्य नहीं। नीली रोशनी के बीच काले बैकग्राउंड पर कुछ शब्द उभरे, वेलकम वर्ल्ड ऑफ मंत्रलोक। वे शब्द किसी खेल की तरह नहीं लगे, वे किसी घोषणा जैसे भी नहीं थे, बल्कि एक आमंत्रण। कमरा पूरी तरह शांत था, और उसी सन्नाटे में एक नई यात्रा ने जन्म लिया।